प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
Oh, सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से प्रेरित यूहन्ना की प्रथम पत्री का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आज हम इस पत्री के परिचय से संबंधित कुछ बातों पर विशेष ध्यान देंगे। हमें आशा है आप हमारे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आशीष प्राप्त करते हैं। आपके पत्रों के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि पत्रों का ये सिलसिला निरंतर बनाकर रखें ताकि हम आपके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात ये कि आपके पत्र हमारे प्रोत्साहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, सो जब आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो पत्र लिखना ना भूलें। आज हम प्रेरित यूहन्ना की प्रथम पत्री के परिचय पर ध्यान देने जा रहे हैं, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और सामर्थी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है और जीवन में ये सुंदर क्षण दिए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि आज के सत्य वचन में हमारा मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हम आपके पवित्र वचन को समझ सकें, आपके वचन को ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार आचरण कर सकें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को प्रभु जी आप दूर करें, ताकि हम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आपके सत्य और पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी गंभीर रोग से पीड़ित है या किसी समस्या में उलझा हुआ है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करें, उसकी सहायता करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज से हम प्रेरित यूहन्ना की पहली पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु इससे पूर्व कि हम इस पत्री का अध्ययन आरंभ करें, हम इस पत्री की कुछ प्रमुख बातों के विषय में ध्यान देंगे। सर्वप्रथम हम लेखक के विषय में ध्यान देंगे। ये तो पत्री के नाम से ही आप समझ लेंगे कि इस पत्री के लेखक प्रेरित यूहन्ना है, क्योंकि इस पत्री को हम यूहन्ना की पहली पत्री के नाम से जानते हैं। प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक थे। वह जब्दी के पुत्र व याकूब के भाई थे। प्रेरित यूहन्ना चौथे सुसमाचार के लेखक भी हैं, जिसे हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के नाम से जानते हैं। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लेखक भी हैं, और ये वही यूहन्ना है जिससे प्रभु यीशु मसीह अत्यंत प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना वास्तव में पंच ग्रंथ लेखक हैं। उन्होंने सुसमाचार की पुस्तक लिखी, 3 पत्रियां लिखी और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लेखक भी वही हैं। जिस समय प्रेरित यूहन्ना ने ये पत्री लिखी तो संभवतः उस समय वही एकमात्र ऐसे प्रेरित थे जो जीवित थे, अन्यथा शेष सभी प्रेरित प्रभु में सो चुके थे। अधिकांश प्रेरित शहीद हो चुके थे। वह लगभग प्रथम शताब्दी के अंत तक जीवित रहे। जहां तक हम प्रेरित यूहन्ना के विषय में जानते हैं, वह लगभग प्रथम शताब्दी के अंत तक जीवित रहे, और जब तक वह जीवित रहे उन्होंने इफिसुस की कलीसिया में एक पास्टर के रूप में सेवकाई की। अब जहां तक लेखन काल का प्रश्न है, इस पत्री का लेखन काल लगभग 85 से 95 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत रुचिकर है। इस पत्री को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक इफिसुस नगर के विषय में जानकारी प्राप्त करें। उस समय के इफिसुस नगर में व संपूर्ण रोमी राज्य में ये चार प्रमुख बातें प्रचलित थीं। प्रथम बात, उस समय के अधिकतर विश्वासी प्रारंभिक कलीसिया की पहली व दूसरी पीढ़ी की संतान थे। उनके भीतर से वह नवीनता, वह चमक जो प्रारंभिक कलीसिया में पाई जाती थी, धूमिल हो रही थी, जैसा कि हम वर्तमान समय में भी देख रहे हैं। कलीसिया की वह चमक निरंतर धूमिल होती जा रही है। जो प्रेम व उत्साह प्रारंभिक कलीसिया में मसीह के लिए पाया जाता था, उसका अभाव इस समय के इफिसुस के विश्वासियों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, और इस कारण यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे अध्याय के चौथे पद में कहा कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सब प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु परमेश्वर को कलीसिया से ये शिकायत है कि उसने पहला सब प्रेम छोड़ दिया है। आज भी प्रभु मुझसे और आपसे ऐसा ही कहते हैं। इसके दशे में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय पहले मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 12वें पद में कह दिया था कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और उस समय की इफिसुस की कलीसिया का यीशु मसीह के प्रति भक्ति व समर्पण का धीरे धीरे पतन हो रहा था, उसमें गिरावट आ रही थी। उत्तम स्तर का मसीही जीवन मसीहों को अन्य लोगों से भिन्न बना देता है। तब दूसरी बात यहां पर है कि मसीही व्यक्तियों में तथा अन्य लोगों में एक अंतर होता है, परंतु उस समय के इफिसुस के विश्वासी इस अंतर को नहीं मानते थे। विश्वासियों को संतों की उपाधि भी दी गई है, जिसे यूनानी भाषा में हैगियोस शब्द दिया गया है। मूल रूप से इस शब्द का जो भाव है वो ये है कि परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के भवन के पात्र पवित्र गिने जाते थे, जैसा कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, क्योंकि वे केवल परमेश्वर के लिए प्रयोग किए जाते थे। वे केवल परमेश्वर की भवन की सेवा के लिए अलग किए हुए थे। वे केवल परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किए हुए पात्र थे, इसलिए वे पवित्र कहलाते थे। परमेश्वर का भवन अलग किया हुआ था, सबत अर्थात विश्राम दिन अलग किया हुआ था, और अब मसीही जन अलग किए हुए हैं केवल परमेश्वर के लिए। वे शरीर और संसार के कार्यों के लिए नहीं हैं, वे परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। इस कारण उनमें अंतर पाया जाता है। वे संसार जैसे नहीं हैं, वे संसार जैसे दिखाई नहीं देते, वे संसार जैसे कार्य नहीं करते। इसलिए मसीही लोग, प्रभु के जन, विश्वासी जन संसार से भिन्न दिखाई देने वाले लोग हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। परंतु इफिसुस की कलीसिया में ये कमी पाई जाती थी, और ये कमी मेरे और आपके समय में भी पाई जाती है। आज अधिकांश कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अन्य लोगों के समान दिखाई देना चाहते हैं, अपनी बातों के द्वारा, अपने पहनने ओढ़ने के द्वारा, अपने फैशन के द्वारा। किंतु मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने अपने लोगों को संसार से अलग किया है, पृथक किया है, ताकि वे संसार जैसे दिखाई ना दें, उनमें संसार जैसा आकर्षण, संसार जैसा रूप ना पाया जाए, उनमें परमेश्वर का स्वरूप पाया जाए। इफिसुस की कलीसिया में इस बात की कमी हो गई थी। उनका जीवन समझौते का जीवन बन गया था। वे उस सांचे में नहीं ढल पाए थे जिसमें प्रभु के शिष्य थे, और जिनके लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, अलग कर लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। मित्र, उस समय इफिसुस की कलीसिया में बाइबल पवित्र वचन के मापदंडों अर्थात स्टैंडर्ड्स को तुच्छ जाना गया, उनका निरादर किया गया। इस दशा में पहुंच गया था इफिसुस का चर्च, इफिसुस की कलीसिया, उनके समक्ष बाइबल के अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल के मापदंडों की कोई कीमत नहीं थी, कोई मूल्य नहीं था। तब यहां तीसरी बात है, और ये तीसरी बात सबसे प्रमुख बात है, कि उस समय की इफिसुस की कलीसिया में एक गलत धारणा उत्पन्न हो गई थी, और जो गलत बात थी वो ये थी, दुष्प्रेरणा, गलत प्रेरणा ये कलीसिया में पाई जाती थी। उस समय कलीसिया को दूषित करने वाली, पथ भ्रष्ट करने वाली शिक्षा का अत्यधिक प्रचलन था। कलीसिया के मध्य ऐसी शिक्षा आ गई थी जिसके द्वारा कलीसिया प्रदूषित हो रही थी, कलीसिया पथ भ्रष्ट हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 24वें पद में बताया कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहां तक कि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, यहां तक कि प्रेरित पौलुस भी इफिसुस के प्राचीनों को चेतावनी भी देते हैं। प्रेरितों के कार्य उसके 20वें अध्याय के 29 और 30 पदों में हमें बताया गया कि पौलुस कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो लोगों को अर्थात चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। सो प्रेरितों ने समय समय पर इस बात के लिए कलीसिया को चेतावनी दी है। मेरे मित्र, उस समय मसीहत को नाश होने का भय नहीं था, परंतु उसके स्वरूप के बदल जाने का भय था। ध्यान रहे, मसीहत को आप नाश नहीं कर सकते, उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। तब यहां चौथी बात है, जो अत्यंत विशेष बात है, मुख्य बात है, जो इफिसुस की कलीसिया में पाई जाती थी, वो थी गूढ़ ज्ञानवाद। गूढ़ ज्ञानवाद, गूढ़ ज्ञानवाद मसीहत का प्रमुख बैरी था, वह आज भी हम इसको देखते हैं कि ये मसीहत का प्रमुख बैरी है। गूढ़ ज्ञानवादियों ने प्रभु यीशु मसीह की मानवीयता अर्थात उनका इस देह को प्राप्त करना तथा ईश्वरत्व दोनों को अस्वीकार किया था। गूढ़ ज्ञानवादी प्रभु यीशु मसीह के मानव स्वरूप को और उनके ईश्वर रूप को स्वीकार नहीं करते थे। उनका ये विश्वास था कि परमेश्वर ने कभी भी मानव देह को धारण नहीं किया, और इसके पीछे उनका तर्क ये था कि क्योंकि शरीर में दुष्टता ही वास करती है, उसमें पवित्रता निवास करती ही नहीं है, इसलिए वे इस विचार को मानते थे कि परमेश्वर कभी भी देह धारण नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है। और इस कारण से प्रेरित यूहन्ना ने स्पष्ट रूप से लिखा, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय के 14वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही थी, उस समय के लोग परमेश्वर के देह धारण पर विश्वास नहीं करते थे, वे इसे स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए प्रेरित यूहन्ना ने ये बात उनके सामने स्पष्ट की कि वचन अर्थात परमेश्वर का वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ। मेरे मित्र, अपनी इस पत्री में प्रेरित यूहन्ना अर्थात पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय के दूसरे और तीसरे पद में लिखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो कि प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और प्रत्येक आत्मा जो यीशु मसीह को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही तो मसीह विरोधी आत्मा है जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी संसार में है। प्रेरित यूहन्ना ने गूढ़ ज्ञानवादियों के सिद्धांत के उत्तर में इस पत्री को लिखा है। प्रेरित यूहन्ना की यह पत्री विशेषकर इन अपसिद्धांतों का विरोध करती है। प्रेरित योहन्ना की पहली पत्री मुख्यतः 5 प्रमुख कारणों से लिखी गई है। पहला कारण है, जो पहला योहन्ना उसके 3 पद में पाया जाता है, कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। 5 कारणों में से पहला कारण यह है कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। वास्तव में हमारी सहभागिता पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तब पत्री के लिखे जाने का दूसरा मुख्य कारण है, जो पहला योहन्ना उसके पहले अध्याय के 4 पद में पाया जाता है, कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तब तीसरी बात है, या तीसरा कारण है, जो पहला योहन्ना के 2 अध्याय के 1 पद में पाया जाता है, कि तुम पाप ना करो। योहन्ना इस पत्री को इसलिए लिखते हैं, कलीसिया को प्रेरित करते हैं कि कलीसिया या मसीह के लोग पाप ना करें। चौथी बात, जिसे हम पहले योहन्ना के 5 अध्याय के 13 पद में पाते हैं, कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मैं और आप मरना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहता, अनंत काल तक जीवित रहना चाहता है। योहन्ना कहते हैं कि अनंत जीवन तुम्हारा है, अर्थात उनका जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तब इस पत्री के लिखे जाने के 5 प्रमुख कारणों में से 5वां कारण यह है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करो। इसे हम पहला योहन्ना उसके 5 अध्याय के 13 पद में पाते हैं। तो इन 5 कारणों से योहन्ना इस पत्री को लिखते हैं। पहला कारण कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो, हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र मसीह यीशु के साथ है। दूसरा कारण कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हम इसलिए इस पत्री को लिख रहे हैं। तीसरी बात कि तुम पाप ना करो, और चौथी बात अनंत जीवन तुम्हारा है, और 5वीं बात कि तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करो। अब प्रश्न ये उठता है कि योहन्ना ने इस पत्री को किस अभिप्राय से लिखा। मित्रवर, ये पत्री एक पारिवारिक पत्री है। इस पत्री में परमेश्वर की संतान को संबोधित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और इस परिवार में हमारा ऐसा संबंध होता है जो टूटने के पश्चात भी दोबारा स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि यहां प्रभु के वचन में बताया गया है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये पद पहला योहन्ना उसके 1 अध्याय के 9 पद में पाया जाता है। इस प्रकार से हमने आज इफिसुस की कलीसिया में पाई जाने वाली दुर्बलताओं के विषय में देखा। ये दुर्बलताएं आज के परिवेश में भी पाई जाती हैं। आज भी हम इन दुर्बलताओं को देखते हैं। आज भी कलीसिया में गूढ़ ज्ञानवाद का बहुत जोर है, इस पर बहुत बल दिया जा रहा है, और इसलिए आवश्यक है कि हम बड़े ध्यानपूर्वक इस पत्री को पढ़ें, ताकि उन बातों को समझें जो निरंतर हमारे जीवन में पनप रही हैं और हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए, अपनी पवित्रता को, अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए संसार से पृथक किया है, ताकि हम पृथक दिखाई दें और एक भिन्न रूप में परमेश्वर की संतान के रूप में इस संसार के लिए उपयोगी ठहरें। सो आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन से उचित शिक्षा पाएं, चेतावनी पाएं और अपने जीवन को उचित मार्ग पर रखें और परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के पश्चात उनसे आशीष प्राप्त करें। आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन में सदा बने रहें। मैंने अपने सेवकाई के मध्य में इस बात का अनुभव किया कि अन्य कलीसियाई पत्रियों की अपेक्षा यह पत्री, अर्थात योहन्ना की 1 पत्री, कलीसिया में विश्वासियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी है। मेरे मित्र, इस छोटी पत्री को गहन रूप में समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेरित यूहन्ना की प्रथम पत्री में परमेश्वर की तीन परिभाषाएं पाई जाती हैं। पहली परिभाषा कि परमेश्वर ज्योति है, दूसरी परिभाषा परमेश्वर प्रेम है, और ये मैं और आप भलीभांति जानते हैं, और तीसरी परिभाषा है परमेश्वर जीवन है। मित्र, क्या मनुष्य के जीवन में यह तीन बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ज्योति, प्रेम, जीवन। और यूहन्ना बताते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर में है। परमेश्वर स्वयं ज्योति है, प्रेम है और जीवन है। क्या संसार के ज्ञानी इन तीनों बातों की खोज में नहीं है? आज संसार इन तीन बातों की खोज में लगा हुआ है। श्रोता, ये तीनों बातें, ज्योति, प्रेम तथा जीवन, हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, किंतु किस प्रकार? हम इस प्रश्न का उत्तर इस पत्री में प्राप्त करेंगे। और इसी विचार को ध्यान में रखकर हम प्रेरित यूहन्ना की प्रथम पत्री का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, किंतु समय अभाव के कारण आज हम यहीं पर ठहरते हैं। अगले कार्यक्रम में यूहन्ना की प्रथम पत्री को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओं, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।